ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। युवा जनशक्ति के प्रवास को रोकने के प्रति सभी को गंभीर होना चाहिए, राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल का आग्रह। सुदूर पश्चिम कर्नाली और गंडकी प्रदेश के उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी जिलों में हुई बर्फबारी और भारत के उत्तराखंड के चमोली में हुए बर्फबारी में फंसे लोगों में से 4 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने देश और जनता के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है, इसलिए प्रतिज्ञा सहित राष्ट्र निर्माण के महाअभियान में जुटने का अपील किया है। कास्की के पोखरा महानगरपालिका वार्ड नंबर 18 सारंगकोट में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ एवं धार्मिक पर्यटन महाउत्सव 2081 एवं देवालय सारंगकोट धाम का समुद्घाटन समारोह को आज संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौड़ेल ने युवा जनशक्ति के पलायन से देश को बचाने में संबंध सभी को गंभीर बनने का आग्रह किया। राष्ट्रपति पौड़ेल ने कृषि, जल स्रोत, पर्यटन और पूर्वाधार को विकास है, इसलिए जल स्रोत पर्यटन उद्योग का विकास और उत्पादन को बढ़ाकर स्वदेशी अर्थतंत्र को मजबूत बनाना होगा। इस्लाम धर्मावलंबियों का महान पर्व रमजान कल से शुरू होगी। 1 महीने तक मनाए जाने वाले रमजान पर्व में इस्लाम धर्मावलंबियों को दिन में निराहार होकर शाम के नवाज का अजाम सुनकर रोजा खोलने अर्थात खाने का चलन है। शरीर को शुद्ध रखकर ही रोजा रखने का मान्यता है, पर नाबालिग, बीमार, गंभीर रोगी और गर्भवती को रोजा रखना अनिवार्य नहीं है। बारिश के साथ आए बर्फबारी के बाद सुदूर पश्चिम कर्नाली और गंडकी प्रदेश के उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी जिलों का जनजीवन प्रभावित बना हुआ है। बाजुरा के ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल पोरखे गढ़ी लगायत बाजुरा के उच्च पहाड़ी भाग में इस साल में 5वां बार बर्फबारी हुआ है। इसी तरह बर्फबारी के कारण नागम गमगढ़ी सड़क अवरुद्ध बना हुआ है। इसी तरह गोरखा जिला की चुमनुमरी गांवपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित सामदो क्षेत्र में विगत 3 दिनों से पड़ रहे बर्फबारी अभी भी नहीं रुका है। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के केंद्रीय समिति की बैठक कल से होने जा रही है। ललितपुर में कल से होने वाली बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और पार्टी का संगठनात्मक कार्य योजना को विषय पर विचार विमर्श होगी। ये जानकारी पार्टी के प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेत ने दी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने सिरहा की नवराजपुर गांवपालिका वार्ड नंबर 1 भगवतीपुर स्थित रिंकू कुमारी सदा के घर पर पहुंचकर उन्हें न्याय दिलाने में सकभर सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। आज जनता के साथ माओवादी तराई मधेश जागरण अभियान के दौरान सिरहा पहुंचे अध्यक्ष दहाल सहित माओवादी केंद्र के नेताओं ने दिवंगत रिंकू के घर पर जाकर कहा कि जितना जल्द हो सके न्याय के लिए पहल करेंगे। काठमांडू महानगर पालिका ने सार्वजनिक स्थान में कचरा फेंकने वालों किसी के भी 5,000 से 15,000 रूपये तक का जुर्माना भरवाएगी। काठमांडू महानगर पालिका वातावरण विभाग के मुताबिक कामापा क्षेत्र के घर, कंपाउंड तथा परिसर का कचरा सड़क, फुटपाथ तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में फेंकने, रखने व जमा करने जैसे काम करने पर 5,000 से 15,000 रूपये तक का कार्रवाई करेगी। संचार एवं सूचना प्रविधि मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि सरकार द्वारा सदन में पेश किया गया अध्यादेश पारित हो जाएगा। आज हिमालय आंख अस्पताल के 32वीं वर्षगांठ के अवसर पर पोखरा में आयोजित कार्यक्रम में संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि सुशासन प्रवर्धन और सार्वजनिक सेवा को प्रभावकारी बनाने से सरकार ने अध्यादेश लाया है, इसलिए पारित किया जाना चाहिए। संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि संसद में आईन कानूनों को बनाने में अधिक समय लगेगी, इसलिए सरकार अपने अधिकार प्रयोग करके अध्यादेश लाया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम
थियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को फोर्जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को फोर्जी आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री रमेश लेखक ने कहा कि नशामुक्त समाज का निर्माण के निमित्त नशामुक्त विरूद्ध के महाअभियान को देशव्यापी बनाना होगा। काठमांडू के घाटी प्रहरी कार्यालय द्वारा आज से शुरू किए गए नशामुक्त विरूद्ध के महाअभियान उद्घाटन समारोह में गृहमंत्री लेखक ने नशा करने वाले व्यक्ति परिवार होते हुए समाज के लिए घातक होगा। गृहमंत्री लेखक ने कहा कि नशा से व्यक्ति को मात्र न होकर समग्र समाज को खोखला बनाने को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशा मुक्त विरुद्ध के महाअभियान को विद्यालय स्तर तक पहुंचाना जरूरी है। भूमि प्रबंधन सहकारी एवं गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी ने कहा है कि कानूनी बाधाओं को दूर करने और जो कानून इसके लिए उपयुक्त नहीं है उन्हें बदलने के लिए अध्यादेश लाया गया है। आज सिंधुली में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि चूंकि सरकार भूमिहीन दलितों अतिक्रमणकारियों और असंगठित निवासियों के प्रबंध के पक्ष में है इसलिए वे उन लोगों को लाल पुर्जा देने के लिए काम कर रहे हैं जिन्हें लाल पुर्जा नहीं मिला है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा ने कहा है कि सभी दलों को शामिल कराकर संविधान संशोधन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। आज नेपालगंज में आयोजित संविधान संशोधन आवश्यकता और चुनौती विषय के लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय अंतरक्रिया कार्यक्रम में महामंत्री थापा ने कहा कि किसी का अधिकार कम न करके और व्यवस्थित बनाने के हिसाब से संविधान संशोधन किया जाएगा। महामंत्री थापा ने यह भी कहा कि निर्वाचन प्रणाली संघीयता और सुशासन सुदृढ़ होने के हिसाब से संविधान संशोधन किया जाना चाहिए। सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसबी नेपाल टेलीविजन इटहरी चैनल के आयोजन में सार्वजनिक सेवा प्रसारण एनटीवी इटहरी विषयक विचार गोष्ठी संपन्न हुआ है। नेपाल टेलीविजन इटहरी चैनल में आयोजित विचार विमर्श गोष्ठी में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट ने कहा कि राष्ट्रीय एकता विपद और समृद्धि के विषय को पीएसबी ने विशेष प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाई जाएगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने के बाद बर्फ में 55 लोग फंस गए थे। इनमें से 50 लोगों को बाहर निकाला गया है। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि इनमें से 4 की मौत हो गई है। बाकी लोगों को बचाने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नेतृत्व सेना की आईबीएएक्स ब्रिगेड कर रही है। घायल लोगों को पहले बाहर निकाला जा रहा है। सेना के प्रवक्ता के अनुसार फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए 6 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। इनमें इंडियन आर्मी एविएशन से 3 चीता हेलीकॉप्टर, इंडियन एयरफोर्स से 2 चीता हेलीकॉप्टर और इंडियन आर्मी द्वारा लिया गया एक सिविल हेलीकॉप्टर शामिल है। अभी भी 5 लापता लोगों को ढूंढने के लिए सेना अभियान चला रही है। बचाव कार्य के लिए चलाए जा रहे अभियान की निगरानी के लिए वरिष्ठ सेना अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। युवा जनशक्ति के प्रवास को रोकने के प्रति सभी को गंभीर होना चाहिए, राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल का आग्रह। सुदूर पश्चिम कर्नाली और गंडकी प्रदेश के उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी जिलों में हुई बर्फबारी और भारत के उत्तराखंड के चमोली में हुए बर्फबारी में फंसे लोगों में से 4 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।